ॐ शांति ॐ शांति। अपने से ऊंचा बनाने वाला बाबा हम बच्चों को कितना प्यारा है। बाबा हम बच्चों को ऊंच तो क्या सब ज्ञान रत्नों से भरपूर कर देते हैं, तो बच्चों का भी क्या फर्ज बनता है? क्या फर्ज बनता है? बाबा को प्यार से याद करना, बाबा का दिल से शुक्रिया अदा करना। लेकिन आज बाबा ने मुरली के अंदर एक बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने कहा, बच्चे बाप को बार बार भूल जाते हैं। बाबा क्या नहीं देते हैं और क्या से क्या प्राप्ति करा देते हैं। लौकिक में भी कोई व्यक्ति कुछ भी प्राप्ति कराता है, उसको कभी भी नहीं भूलते हैं और उसका कितना एहसान रखते हैं। लेकिन बाबा बच्चों को इतना देते हैं फिर क्यों भूल जाते हैं? बाबा ने कहा, इसका कारण है कि बच्चों की बुद्धि में निश्चय की कमी। कितनी बड़ी बात है, बाप है, हमारा पिता है, हमारा टीचर है, सतगुरु है, इतना कुछ है, फिर भी हम बच्चे बाबा को क्यों भूल जाते हैं? तो बाबा भी देखते हैं कैसे बच्चे हैं कि इनका निश्चय डामाडोल होता है। इसलिए अगर जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी भी ये नहीं कहेंगे, बाबा हम आपको भूल जाते हैं, बाबा आपको कैसे याद करें। तो इसलिए बाबा चार्ट भी बता देते हैं बच्चों को क्या कारण है जो बाबा की याद भूल जाती है। और दूसरी बात बाबा ने कही, कई बच्चे किस प्रकार से चलते हैं, दुनिया में क्या हालत है, लेकिन बाप आकर के बच्चों को बेहद का वैरागी बनाते। लौकिक में भी सन्यासी कैसे बनते हैं, कहेंगे इस सृष्टि के अंदर सुख काग विष्ठा के समान है, घर बार छोड़ करके फिर यहाँ से वहाँ चले जाते हैं और सन्यासी बन जाते। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन बेहद के सन्यासी हो, बुद्धि से ही सन्यास करना है, त्याग करना है। फिर तपस्या के लिए भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया। अभी हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 16 जुलाई 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे। जो सर्व का सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वह आपका बाप बना है। कितना बड़ा भाग्य। मीठे बच्चे, जो सर्व की सदगति करने वाला दाता है वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर ठहर नहीं सकती? किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर ठहर नहीं सकती? इसका उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं ये भी नहीं जानते, तो याद किसको करेंगे? स्कूल में बच्चा पढ़ता है, टीचर की याद रहती है, तो बाबा कहते हमको कौन सिखला रहे हैं ये भी नहीं जानते, तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा, है ना? याद, अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा, हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम वा मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, सुख किस में है और दुख किस में है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती, भक्ति समझ आते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं कि भक्ति उस प्रकार से जो करते थे। लेकिन बाबा कहते बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहते तुम्हारी भक्ति बंद हो जाती है। तो बाबा बच्चों को भी कभी कभी कहते थे बैठिए ना भट्टी वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा, बाबा के पास नए नए बच्चे आते थे ना तो बाबा के पास आकर के क्या करते थे, बाबा को देखते थे और बाबा के आगे नीचे झुकते थे और बाबा को कहते थे बाबा हमारे सिर पे हाथ रखो, हमको आशीर्वाद दो। तो बाबा कहते देखो देखो भगत आ गया है ना ऐसा। अब बोलो आप में से कोई भगत है कि नहीं ना। वो मांगते नहीं है, उनको बाबा देते हैं। इसलिए बाबा के पुराने बच्चे अमृतसर से, बाबा की पुरानी धरनी और हमारी प्यारी प्यारी चंद्रमणि दादी की त्याग तपस्या ज्ञान के बीच की कितनी बड़ी श्रेष्ठ दादी ने क्या नहीं किया है। चंद्रमणि दादी के लिए एक बार मन से थैंक्स देते हुए ताली बजाओ। कितना प्यार से कुमारियों को त्याग किया जो आज देश विदेश में सेवाएं कर रही हैं। तो इसलिए तो कौन है भट्टी वाले, नहीं बोलो भगत हो या बच्चे हो, अधिकारी हो या मांगने वाले हो, पक्का अधिकारी, ठीक है ना, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं तो तुम्हारी भक्ति बंद हो जाती है, घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण बंद हुआ। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में तो फर्क है ना, नई दुनिया है पावन दुनिया, तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम, सुख धाम को स्वर्ग और दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहाँ कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं जब तक भारत में न आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। बाबा आएंगे बच्चों को साथ ले जाएंगे। भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है, निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगड़ आत्मा कुछ कर सकती है क्या, शरीर बिगड़ तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छी होती है कोई चंचल होती, होता ना कभी कभी आत्मा प्रवेश कर लेती है तंग करती है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं करती। कोई अच्छे होते हैं कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाही बना देते हैं, एकदम क्या बना देते हैं, ऐसी हालत कर देते हैं जिस तवाही में सहजे से अजीब से एक्शन होते हैं, एकदम तवाही बना देते हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर चाहिए, वैसे भी परम पिता परमात्मा को शरीर ना हो तो भारत में आकर के क्या करेंगे। भारत ही अविनाशी खंड है, सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। वास्तव में शुरू में बाबा कहते हैं गाते भी हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह लोग फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म को हिंदू कह देते। कई बार जनगणना वाले आते ना तो वो आकर के करते हैं, तो वो लिखते हैं कौन सा धर्म उनको कौन देवता धर्म के है या सनातन धर्म के, तो उसको हिंदू कॉलम लिखते हैं। उनको बोलो ना सनातन धर्म में लिखो, कहेंगे नहीं हमारे पास तो केवल एक ही कॉलम है, हिंदू मीन्स वो सनातन धर्म के हैं। तो बाबा कहते हैं गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहलाते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़ी कहलाएंगे। उनको पूछेंगे ना वो कहेंगे हमारा धर्म क्या है, क्रिश्चियन है। लेकिन वो नहीं कहते कि हमारा धर्म यूरोप का है, यूरोप में रहते हैं तो यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे। ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं। जो देवी देवता श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे, अगर निश्चय नहीं तो समझो कि वह इस धर्म के, जो इस धर्म के होंगे आते देखते उनको निश्चय हो जाएगा। तो कई आते प्रदर्शनी में आते हैं, सेंटर पर आते हैं, तो उनको निश्चय नहीं होता है, तो उनको बस योग ही मदद करता है। विदेशों में जाते हैं ना, वहां पर कई धर्म वाले आते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, योग अच्छा लगता है। तो बाबा कहते योग करके जाएं, कम से कम अपने धर्म में ऊंच पद तो पाएंगे ना। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं है, भल यहाँ बैठे होंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद वाला होगा, चाहते हैं सब सुख शांति। बाबा कहते कई आएंगे जिनको प्रजा में कम पुरुषार्थ करेंगे, प्रजा में कम पद पाएंगे, चाहते सब सुख शांति है। वह तो होता है सतयुग में, सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं, अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थुर है देवी देवता धर्म, फिर है तीन ट्यूब्स, स्वर्ग में तो वह हो ना सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं, किस्म किस्म के मनुष्य हैं, इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कि कितने धर्म हैं, सतयुग आदि में एक धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं भारत ही बहुत प्राचीन बहिष्ट था, बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता। भारत इतना रिच था, भारत के अंदर इतना कुछ था, बाहर वाले आए धीरे धीरे एंट्री करते ही धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ लूट लिया, फिर मान भी देते हैं रिस्पेक्ट भी देते हैं। भारत बहुत साहूकार था इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई गरीब कोई अमीर बनता है तो तरस भी खाते हैं, कोई साहूकार गरीब बनता है, पहले साहूकार फिर गरीब बन जाता है तो लोग उसको मदद करते हैं, तरस भी खाते हैं। कोई साहूकार गरीब बनता है तो तरस भी खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो पड़ा, अब भारत बेचारा नहीं रहा है, जब से बाबा आए हैं भारत और ऊंच बनता जा रहा है। अभी तो भारत से कितनी मदद लेते हैं, भारत सबको हर क्षेत्र के अंदर गाइड करता है, हर क्षेत्र के अंदर बहुत मदद करता है। वो समय था जबकि ऐसी हालत थी। अब बाबा क्या बताते हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है, कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वर है, और रहम दिल बाबा है ईश्वर है, और आते भी भारत में है। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे। बाप है बेहद का कौन है? बाप कौन है? कौन बताएगा बाप कौन है बेहद का? रहम दिले क्या है? कौन है बोलो तो सही। बाबा बेहद का साहूकार है। बाबा जैसा साहूकार कोई मिलेगा आपको? कोई नहीं मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं बाप है बेहद का साहूकार, ऊंचते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो? बोलते जाओ भूल जाता है ना, इसलिए कि आप बोलेंगे है ना। तुम किसके बच्चे हो? तो ये भी तो नशा होना चाहिए। बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे। और बच्चे क्या कहते हैं? हम बाबा के सिकिलरे बच्चे हैं। तुम किसके बच्चे हो? वह भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिनको ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो है जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ। भक्ति मार्ग में तो बहुत पुकारा बाबा के बच्चे। शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई और फिर भारत में स्थानांतरित हुआ, जगह जगह सेंटर खुले, तो कितने माताओं को बंधन थे, बाबा को पुकारती रहती थी और बाबा उनको बहुत प्यार करते थे। अब तो ऐसे बंधन है ही नहीं, अब तो कोई ऐसा पुकारता ही नहीं है ना। अभी तो बस बाबा के बने सब प्राप्ति मिल जाती है ना। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। है कोई बंधन वाला भाई या बहन? बाबा बंधन, अभी बाबा कहते पुकार नहीं सकते। बाबा से प्यार करो और बाबा को याद करो, सब बंधन ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे। अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझाते हैं, नॉलेजफुल है। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें भी देह से न्यारा देही अभिमानी बनना। कौन कहते? खुद ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं, मैं भगवान नहीं हूँ। जैसे मैं देही अभिमानी बन रहा हूँ, ऐसे तुम्हें भी देही अभिमानी बनना है। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को अपने शरीर को भूलना है। ये भगवान है ही नहीं। शुरू में बहुत बहस करते थे ना बाबा के लिए, तो बाबा पक्का करा रहे, ये पक्का करा दो, ये भगवान तो है ही नहीं। इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंचते ऊंच। ये पति दुनिया पुराना तन है, सिर्फ महिमा एक की है। दोनों साथ में हैं, लेकिन महिमा किसकी है? केवल एक शिव बाबा की। सिर्फ महिमा एक की है, उनसे योग लगाना है तब ही पावन बनेंगे, नहीं तो कभी भी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाए खाकर चले जाएंगे। बाबा को हमेशा होता था मेरे बच्चे सजा नहीं खाए। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बैमुख करने वाला। कौन सा? हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा सो परमात्मा। तो बाबा कहते ये मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना ये बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बन क्या बनेंगे? क्षत्रिय बनेंगे। फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे, और कोई को थोड़ी पता है कि हम क्या बनते फिर क्या बनेंगे, हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। अभी तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है। कौन ब्राह्मण नहीं है बताओ? बाबा कौन सा बाबा ब्राह्मण नहीं है? शिव बाबा ब्राह्मण नहीं है, वो तो सर्वशक्ति, वो ना वर्ण में आएगा ना ब्राह्मण बनेगा ना देवता बनेगा। अभी तुम समझते हो बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया, बाबा ने बच्चों को एडॉप्ट किया, ब्राह्मण धर्म में लाए, अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, ये भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरी कुल की, निराकारी आत्मा असल में ईश्वरी कुल की हैं, निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकार दुनिया में आते हैं, पाठ बजाने आना पड़ता है, वहां से आए फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल वैश्य कुल में आते हैं। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए, 84 जन्मों का चक्र है ना, तुम्हारे बिगन ये ज्ञान और कोई को मिल ना सके, जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। ये सब बातें बाप समझाते हैं, ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती, धीरे धीरे भक्ति का रूप भी बिल्कुल कमजोर होता जाता है ना। तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान का सागर बाप आते हैं तब भक्ति खलास हो जाती है, रात खत्म हो दिन होता है, वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। कहाँ पर? सत्यों के अंदर, वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। यहाँ तो भक्ति में कहाँ कहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ वैसे जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, अच्छी तरह से जाएंगे। अच्छा वहाँ पर अमृतसर वाले कहाँ जाएंगे? अमृतसर आपका कहाँ होगा? है पिकनिक स्पॉट होगा या राजधानी होगी, क्या होगा बताओ? पता ही नहीं है तो क्या होगा? है अरे अमृतसर वालों का पिकनिक स्पॉट कौन सा होगा बताओ? कहाँ होगा पता है कि नहीं? बताओ ना, अमृतसर ही हमारा पिकनिक स्पॉट होगा। अभी वहीं तो मौज करते हो, कहाँ जाते हो? राजधानी से अमृतसर जाएंगे, पैदल जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, किस में जाएंगे? पुष्पक विमान में जाएंगे। खुशी से बोलना चाहिए ना, धीरे 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 धीरे, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते हैं, आराम ही आराम है, कोई भी हंगामा नहीं, ये भी ड्रामा बना बनाया हुआ है। भक्ति कलट में ही बाप आते हैं, सबको वापिस जरूर जाना है, फिर नंबर वार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट हो गया तो क्रिश्चियन धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का फाउंडेशन क्या है? बाबा कहते क्राइस्ट। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज, इन देवी देवताओं का, इन देवी देवताओं के धर्म का बीज है परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? वो भी तो बाबा ने किया ना। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने एडॉप्ट किया तो उनसे छोटा धर्म ब्राह्मण धर्म हुआ। बाबा ने एडॉप्ट किया और ब्राह्मण धर्म बन गया। बाप ने एडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ, ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, ये है चोटी निशानी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी हैं, वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं भारत का कल्याण, लेकिन सबसे अधिक कल्याण किसका है? तुम बच्चों का ही करते। सबसे अधिक कल्याण तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो? सोचो, क्या से क्या बन जाते हो? तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर जीत पाते हो, वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं, मरने की तो बात ही नहीं, वहां पर मरना शब्द नहीं होता। बहुत खुशी से शरीर छोड़ते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, वहां मरने की बात होती नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं चोला बदलेंगे, दूसरा लेंगे, खुशी से लेंगे, लेकिन मरना शब्द नहीं होगा, वहां मरने की बात ही नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, वैसे यहां वहां भी ये पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सत्यों को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, सत्यों को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता, यहां तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही है रौरव नरक। आज की दुनिया को क्या कहते हैं? रौरव नरक। तो बाबा कहते हैं इसका, यहां तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इसका नाम ही है रौरव नरक। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली कर, जगह पुरानी होती है। भारत के अंदर भी अभी ऐसा चल रहा है, विदेशों में होता है जो बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, खराब होने वाली, उसको पहले से ही वो जल्दी खाली करा कर उसको तोड़ करके फिर से नया बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब दुनिया पुरानी होती है तब हम आते। तो बाबा के आने का टाइम जब दुनिया पुरानी होती है तब बाबा को आना पड़ता है। तो बाप कहते हैं जब दुनिया पुरानी होती है तब हम आते हैं। ज्ञान से सदगति हो जाती है, राजयोग सिखलाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं, भक्ति में पूजा करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन पढ़ाई तो नहीं करते ना। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति में तो और कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो आधा कल्प के लिए सुख मिलता है। सन्यासियों को भी, सन्यासी लोग राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते। पहले जमाने में कई राजाओं को सन्यासियों ने वैराग्य दिलाया और वो जाकर के राज कारोबार छोड़ करके सन्यासी बन गए। तो बाबा कहते राजाओं को सन्यासी लोग भी वैराग्य दिलाते हैं। ये तो कांग विष्टा के समान सुख है। अभी तुम बच्चों को भी क्या करना है? अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखलाया जाता है। ये है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम जाना है। बाबा क्या वैराग्य दिलाते, रहना है सब कुछ करना है, अभी केवल सुख धाम को याद करना है, वाया शांति धाम जाना है। जिनवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग है, नहीं तो स्वर्ग कहाँ देखा है। वो लोग तो समझते हैं दुनिया में कि स्वर्ग ऊपर है। बाबा ने भी पहले से बताया है स्वर्ग भी यहाँ है, नरक भी यहाँ है। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर कुछ है ही नहीं। कितनी रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ मिला, थोड़ा पत्थर, थोड़ा पानी, कुछ न कुछ ऐसी और चीजें मिले, लेकिन स्वर्ग तो नहीं मिला ना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखा है। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग और भारत ही नरक बनता है। ये मंदिर पूरा यादगार है, आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता, मनुष्य आत्माओं के नाम बदलते हैं और वो उनके जितने शरीर उतने नाम बदलते हैं। बाबा कहते शिव का नाम नहीं बदलता और सब आत्माओं के नाम बदलते, शिव का नाम नहीं बदलता। उनका अपना शरीर है ही नहीं, क्यों नहीं बदलता, क्योंकि शरीर ही नहीं है। शरीर बिना पढ़ाएंगे कैसे, प्रेरणा से तो कोई की बात नहीं हो सकती। प्रेरणा से न बात कर सकते हैं न पढ़ा सकते, प्रेरणा से तो कोई बात ही नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार, ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे। बाबा ये भी राज बता रहे हैं प्रेरणा से। बाबा कहते हैं अगर मैं प्रेरणा से सुनाऊं मैं क्या बता रहा हूँ, बुद्धि तमो प्रधान है तो कुछ समझेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं समझेंगे ना, इसलिए प्रेरणा से तो कोई बात कर ही नहीं सकते। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं वे पूरा निश्चय भी नहीं करेंगे। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जो जन्म जन्मांतर। बाबा कहते वे जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जो जन्म जन्मांतर लिंग को याद करते हैं समझते ये परमात्मा है, उनका ये चित्र है। वह निराकार है साकार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। ये है रूहानी नॉलेज, रूहों को ही ये नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज एक बाप ही दे सकते और कोई नहीं दे सकता है। तो बाबा कहते ये नॉलेज एक बाप ही दे सकते, पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है, निर्वाण में तो कोई जा नहीं सकता, मोक्ष को भी पा नहीं सकते। जो नंबर वन विश्व के मालिक थे वही 84 जन्मों में आते। बाबा कहते नंबर वन विश्व के मालिक भी 84 जन्मों में आते हैं तो बाकी कैसे मोक्ष पा सकेंगे। जो नंबर वन विश्व के मालिक थे वही 84 जन्मों में आते। चक्कर जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं, मनुष्य समझते हैं कि मोक्ष मिलता है। कितने मत मतांतर हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापिस कोई भी जाते नहीं। कितना भी कहें कि वापिस जाते हैं, बाबा कहते वापिस कोई भी जाते नहीं जब तक बाबा ना आए। वापिस कोई भी जाते ही नहीं है। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर क्या करना है, पढ़कर फिर क्या करना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना भी है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके, ना शूद्र ना देवताएं दे सके। ना देवताओं के पास रूहानी नॉलेज है, ना शूद्रों के पास है। तो बाबा कहते न शूद्र न देवताएं दे सकते। सच्चू में तो दुर्गति होती ही नहीं, वहां ना दुर्गति है ना ज्ञान की जरूरत है। सच्चू में तो दुर्गति होती नहीं, जो नॉलेज मिले, ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है, सिवाय याद की यात्रा के और कोई पवित्र बन ना सके। कितना भी कोशिश करेंगे लेकिन जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते सिवाय याद की यात्रा के और कोई पवित्र बन ना सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगे, कम पद पाना है, पुरुषार्थ नहीं किया है तो बाबा पक्का कर रहे हैं, सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है, तुमको तुम्हारी ही बात समझाते। बाबा कहते देखो मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी बात ही तुमको समझाता। नहीं करेंगे पुरुषार्थ तो सजाएं खानी पड़ेगी। तो बाबा बता रहे हैं सच्चू में दुर्गति होती नहीं, जो नॉलेज मिले ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक है, सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। सजाएं तो जरूर खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है, तुमको तुम्हारी ही बात सुनाते हैं। और धर्म में जाने से क्या पड़े, बाबा कहते पहले अपना तो कल्याण करो, और धर्मों के बारे में सोचते रहते इनका क्या होगा, सबका कल्याण होगा, लेकिन पहले अपना कल्याण तो करो ना। तो बाबा कहते हैं और धर्मों में जाने की, तुमको और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही नॉलेज मिलती है। भारत में बाप आकर के तीन धर्म स्थापन करते, बाबा भारत में आते हैं और भारत में आकर के तीन धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते। पहले बाबा ने कहा तीन धर्म स्थापन करते हैं, तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं। वह है ही नीच पतित कुल, शूद्र कौन सा है, नीच और पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो, इनको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा, रुद्र यज्ञ है और रचने वाला कौन है, रुद्र शिव बाबा। रुद्र शिव बाबा ने ही ये यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुम ये नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में पड़ नहीं सकते, बाबा हमेशा पक्का करा, भक्ति में भी कहते कि देवताओं की परछाई ऐसे स्थान पर नहीं पड़ सकते। तो बाबा क्या कहते हैं, देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में पड़ नहीं सकती। तुम बच्चे जानती हो कल पहले जो आए होंगे वही आकर के ये नॉलेज सुनेंगे। जो कल पहले वाले हाथ खड़ा करो, सारे कलप पहले वाले है ना, कलप पहले वाले पुराने है ना। तो ऐसे मत कहना कब बाबा से मिले, बाबा के पास आते थे ना बच्चे, बाबा पूछते थे बच्चे पहले कब मिले हो, बच्चे कहते हाँ बाबा, जिनको निश्चय होता था वो पटापट हाँ करते थे, और जिनको धीरे धीरे नहीं होता था वो क्या कर धीरे धीरे सोचते थे, कहते पहले तो मिले ही नहीं थे, हम तो अभी मिल रहे हैं। तो बाबा समझ आते थे कि इसका पक्का निश्चय नहीं है, ये तो सब निश्चय बुद्धि बैठे यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा बता रहे हैं तुम बच्चे जानते हो कल पहले जो आएंगे वही आकर के ये नॉलेज लेंगे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य तो यहाँ शांति चाहते हैं, अब आत्मा तो है ही शांति धाम के रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति, चारों तरफ देखो लड़ाई झगड़ा क्या क्या चलता रहता है, तो बाबा को कहना पड़ता है इस समय घर घर में है अशांति। रावण राज्य है ना, सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है, एक धर्म एक भाषा होती। बाबा ने सतयुग का बता दिया, वहाँ क्या होता है, एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपने देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपने देह को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। दूसरा, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। वरदान, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा। तीन प्रकार के कौन कौन सी? पहली है नैनो की भाषा, दूसरा भावना की भाषा, तीसरा संकल्पों की भाषा। तो बाबा कहते हैं ये तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। ये अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन तीन भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी, इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप को जो आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। अव्यक्त इशारे और जो हेडिंग चल रहा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर से सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस रीति से एक रस से एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। आज है 16 तारीख, आदरणीय धीरज जी की आज हम एक विशेषता सुना रहे हैं। दीदी जी की तो अनेक विशेषताएं हैं, तो आज की सुनाएंगे जिस पे हम सभी मनन भी करते रहेंगे। अच्छा, दीदी जी की एक बहुत बड़ा था लव एंड ला का बैलेंस। दीदी बहुत लवफुल भी थी लेकिन ईश्वर मर्यादाओं के लिए लवफुल भी थी। लव और ला का बैलेंस, दीदी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह भी देती, हर प्रकार से यज्ञ वत्सों को खाने पीने पहनने रहने की सुविधा देती, उनके स्वभाव का भी ध्यान रखती, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती। लेकिन कभी कभी कोई कोई ईश्वरीय नियम एवं मर्यादाओं में अलबेलापन होता, आलस्य करता या किसी भी मर्यादा को तोड़ता तो उसे फौरन सजा देते। दीदी को यही रहता था कि कोई भी ईश्वरीय मर्यादा को नहीं तोड़ना, और दीदी खुद भी हर प्रकार से हर ईश्वरीय मर्यादा का पालन करते थे। फिर दीदी उनको बुला करके, जैसे बुलाती थी ना, सजा तो क्या देना, पहले से बात करती, सुनने वाले को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे दीदी हमको सजा दे रहे। दीदी को स्टिक सजा नहीं देती थी, दीदी उनको कहती जाओ जाके तपस्या करो, एक घंटा बाबा के कमरे बैठ के तपस्या करो, तो ऐसी उनको प्यार भरी सजा भी देती थी। तो अब दीदी कैसी करती थी, अगर कोई ईश्वरीय मर्यादा को तोड़ता तो उसे फौरन सजा देती या डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती। योग और पढ़ाई यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का आधार है, इसमें कोई भी अलबेलापन ना रहे। दीदी इस पर बहुत ध्यान खिंचवाती। दीदी को जब कुछ करना होता था ना, तो दीदी आकर के आंगन में खड़ी हो जाती थी। दीदी कहती थी बेल बज गया, क्लास के लिए पहले एक बेल बजती थी, पहले एक बेल बजती थी और दीदी को देखा तो समझो दूसरी एक्यूरेट बेल बज गई। तो दीदी से पहले सब जाकर के क्लास में जाकर के बैठ जाते थे, भाग जाते थे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो सूचनाएं, सब सुन के जाएंगे और जिन्होंने नहीं भी सुना है वो जरूर एक दूसरे से सुनेंगे। एक तो आप सबको मालूम है कि बरसात का टाइम है, और जो भी भाई बहने हैं वो समझते हम जितना ज्यादा हो सके बाबा के कमरे में बैठे, और बट्टी के भी बहुत सारे भाई बहने आए हैं। जब बाबा के कमरे में झोपड़ी में जाते हैं ना, तो वहां जाकर के क्या करते हैं, अपने साथ छतरी ले जाएंगे, पानी की बोतल ले जाएंगे, एक बैग ले जाएंगे, और वहां पानी की बोतल बैग से वो कमरे का स्थान भर देते। इसलिए सबको बता रहे हैं कि जब भी बाबा के कमरे में जाएं, सब तीन तीन मिनट बैठो सुबह के टाइम, दिन के टाइम जाकर के 10 मिनट 15 मिनट बैठो, सबको चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बैठा रहे, सुबह से जाकर के बैठ जाते हैं और वहां से उठते नहीं है। इसलिए ड्यूटी वालों को बता देंगे कि सबको ध्यान रखना, एक तो अपना बैग बाबा के कमरे में ले जाओ, छतरी कोई नहीं ले जाएगा क्योंकि बरसात का टाइम है और बैग में पानी होता है, कोई ना कोई पानी की बोतल ले जाते हैं, वो जाकर के ट्रांसलेट के पास रख देते हैं। किसी ने कोई भी चीज बाबा के कमरे में छोड़ी तो वहां से उठा ली जाएगी, और दोबारा अगर आप उसको ढूंढेंगे वह चीज आपको नहीं मिलेगी। और बाबा के कमरे में माताएं क्या करती है, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, और मोबाइल जब बजता है उसको स्विच ऑफ करने का उनको बहुत टाइम लगता है। तो ये भी हर एक को योग के अंदर डिस्टर्बेंस होती है। तो बाबा के कमरे, बाबा की झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल में ना तो ये सब चीजें, हिस्ट्री हॉल में चलो बैग ले गए बात अलग है, बाबा के कमरे और झोपड़ी में बिल्कुल नहीं ले जाना है। और सबको तीन तीन मिनट बैठना है, जिनको ज्यादा टाइम बैठना है वो शांति स्तंभ के बाहर बैठे या आंगन में बैठ करके योग करें, इस बात का ध्यान देना। अगर कोई ज्यादा टाइम बैठेगा तो फिर आप समझ सकते हैं दूसरे कैसे बैठेंगे। तो फिर से पक्का करा रहे हैं बाबा के कमरे में कोई भी चीज नहीं ले जाना है। बाकी भट्टी वालों को बता दें कि मौसम अच्छा नहीं है तो फोटो सेशन नहीं होगा। लेकिन एक और सूचना है, कई भाई बहने मम्मा बाबा एडवांस पार्टी, आध्यात्मिक स्लोगन और दादियों की फोटो, हिस्ट्री हॉल, ये सब मांगते हैं और उनको सेंटर पर जरूरत भी पड़ती है। तो इसलिए मम्मा बाबा, शिव बाबा और अव्यक्त बाप दादा, ब्रह्मा बाबा, ट्रांसलाइट और स्लोगन और सभी सभी बैठे रहेंगे पांच मिनट के लिए, सुन के जाएं। और ये सब चीजें और फोटो, हिस्ट्री हॉल के फोटो आदि, ये सब फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में मिलते हैं। फोटोग्राफी डिपार्टमेंट जो है ये मिल्क डिपार्टमेंट के नीचे है। और टाइमिंग्स हैं सुबह 8:30 से 12 बजे तक। फिर से बता रहे हैं, मम्मा बाबा स्लोगन, हिस्ट्री हॉल के बाबा के फोटो, एडवांस पार्टी के फोटो और अन्य कई चीजें जो हैं वो सब की सब फोटोग्राफी डिपार्टमेंट पे उपलब्ध है। जिसको कुछ भी चाहिए वह फोटोग्राफी से डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। और टाइम है सुबह 8:30 से 12 के बीच में। और फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है जो मिल्क डिपार्टमेंट है उसके नीचे है। अच्छा, ओम शांति। भट्टी वाले सब ठीक हैं? ठीक है ना, सबके पास छतरी है ना, कोई ऐसा तो नहीं छतरी ना लाया हो। और जब बरसात का टाइम है एक बात का ध्यान रखना है, दौड़ना नहीं है, धीरे धीरे चलो, आराम से चलो, क्योंकि फर्श जो है स्लिपरी हो जाता है, खास करके किचन की तरफ और आंगन में फर्श गीला होता है ना, तो स्लिप होने का डर रहता है। कमरों में भी जब जाओ तो धीरे धीरे जाओ, वहां पर भी कोई ना कोई पानी पड़ा होता है तो ध्यान नहीं रहता है, इसलिए इस बात का सबको ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।